Thank you all for joining today and accepting to speak on this important topic. You are all aware of the subject. So, what we'll do is, hello. We'll start without wasting any time. Certain ground rules, we generally have about 1 hour 15, 20, or maybe at the most 1 hour 30 minutes for the webinar, in which we'll request the speakers to speak for about 10 to 12 minutes each. Then no problem, you can speak in Hindi or English, whatever you are comfortable with. And at the end of the session, after the speakers have finished, we will have a question and answer session. And after that, we will conclude. The audience generally, they keep posting their questions on the chat box. And so we will select relevant questions out of those, and we will post them and then request the panelists, or sometimes the speakers, the audience specifically asks a question from a specific panelist. Then we will request that particular panelist to kindly answer. So, to set the ball rolling, I think I'll first request Chakshu. Chakshu Roy, as you all know, is from PRS Legislative, and he frequently writes on these subjects. He's written about this particular topic, I think, in the Indian Express some time back, which I had read. And some of you may have also. So just to set the context, I would request Chakshu to kindly start, and then we'll follow up with the others. Over to you, Chakshu.
Thank you, Major General Anil Verma, for convening this wonderful panel. I am seeing Mr. Krishnamurti after a very long time. Good to have Dr. Haleem, Lakshmikant Ji, Lamba Anupam Ram Vidhan Sabha, and now he's in the Rajya Sabha. It's great to have him, and good to have Anamika Ji to have representatives from across the board. Use my time to just lay down जो ये हमारा टॉपिक या डिस्कशन था हंड्रेड ऑन द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल व्हाट द बिल इज डूइंग सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस बिल इन द मॉनसून सेशन ऑफ 2025 अगस्त में इस संवैधानिक संशोधन बिल को पार्लियामेंट में लाया गया. And the bill is doing, it's a very short bill, and this is what the bill is doing. What the bill is doing is saying that if a minister in whether the central government or the state government is accused of a crime जिसमें जो punishment है is more than 5 years. And then that individual is detained by police authorities for more than 30 days, then either that individual has to resign before 30 days' time, or they are automatically removed from office. उनको automatically निकाल दिया जाएगा on the 31st day अगर उन्होंने resign नहीं किया है. तो state के लिए governor will take that action, and center के लिए the president will take that action. And ये जो कानून है ये it is applicable to Puducherry, it is applicable to the Union Territories of Jammu and Kashmir, and it is applicable, as I mentioned, both to ministers and also to chief ministers and prime ministers. This is roughly what the bill is doing. It was introduced in the Lok Sabha. इसका करंट स्टेटस ये है दैट द बिल हैज बीन रेफर्ड टू अ डिटेल्ड स्क्रूटनी by a joint committee of Lok Sabha and Rajya Sabha MPs. And ये जो committee है इस bill को अब scrutinize करेगी, लोगों से सलाह मशवरा करेगी. There will it will invite stakeholders and have a discussion of, you know, what the bill is and then present its report to Parliament. Because it is a constitutional amendment bill, it requires a special majority to get passed. Simple majority say pass, special majority to pass. And I'll just take two more minutes to lay down as to some things that maybe all of us can discuss over the course of time, and possibly General Verma can then, you know, conduct this discussion around some of these themes. So the bill raises four broad questions. Pehla jo ye sawal uthata hai wo ye hai ki who has the authority to remove a chief minister or who has the authority to remove a prime minister. To wo jo pehli issue is bill ke bare mein hai is that in our parliamentary form of governance, the ability to remove a prime minister or chief minister is vested with parliament, Lok Sabha, or state legislative assembly. Pradhan Mantri ko hatana aur chief minister ko hatana, uski zimmewari aur uski responsibility in do bodies ke paas hoti hai. Aur wo hatane ka sirf ek tarika hota hai ki there is a, you know, no confidence motion, and when, you know, the chief minister or the prime minister loses that no confidence motion, they are removed. So should that authority be moved from the legislature to the police authorities, which is mostly an executive body? That's the first question. The second question is around Sangvad or federalism. Police authorities or authorities who have the power to arrest exist both at the center and the state level. So kya central authorities, when they arrest a minister or a chief minister, will that lead to removal and possibly infringe upon federalism? Or state authorities arresting a central minister, so that creates the next level of complication. And I think the third issue that is raised is about rule of law. If somebody is an accused and they are arrested, it is not a finality of whether, you know, they are convicted of that issue or not. Aur humne ye dekha hai ki conviction ke baad bhi kai baar Supreme Court mein logon ka jaake overturn ho jata hai. So that's the third issue. And the final issue is that kya Pradhan Mantri, does the Prime Minister and the Chief Minister have freedom in deciding who their Council of Ministers is? So, agar ye kanoon, jab ye bill hai, jab ye jo limitations place karta hai, so does it restrict the choice of Prime Minister and Chief Minister to have the Council of Ministers that they would like? So, broadly, I thought I'll set this context, and I think I've taken a little bit more time. I've taken about 10 minutes, but I thought that, you know, these could be four issues on which we can possibly discuss this issue. Thank you, General Verma.
Thank you, Chakshu. We have also given some focal points on which people can speak, in addition to the basic information which Chakshuji has given. Thank you so much for that. And I see that Dr. Vipul Mudgal has also joined. Whatever issue he was having with his thing has been removed. So let me just introduce Dr. Vipul Mudgal. He is a trustee of ADR, as I said, and he is also director of Common Cause. He's been a resident editor of Hindustan Times, South Asia editor at Asia Times in Bangkok, and a BBC journalist in London and Delhi. He's done his PhD from UK, is also a Nehru Fellow. So with that brief introduction, Vipulji, hand over to you.
Thank you, General Verma. You were conducting it quite well, actually. I mean, I'm really sorry. My apologies to everybody for taking time. I think technology can fail us, fail me particularly all the time. So, you see, there is no doubt, jaise Chakshu ne shuruaat mein keh diya pehle se, ki there is no doubt that it's a huge problem. And it needs a solution. मतलब कोई इस पर doubt नहीं है. हम लोगों ने भी common causeness के ऊपर एक case फाइल किया था. ये कई लोगों के साथ मिलकर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और कॉमन कॉज ने मिलकर केस फाइल किया था, जिसमें कि हमने कहा था, यही कहा था कि भाई जो क्रिमिनल, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनको इलेक्शन में आने से रोकना चाहिए. और हमने ये भी देखा, एडीआर का डेटा अगर आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि 2024 46% ऑफ इंडियन एमपीज वर फेसिंग क्रिमिनल केसेस. And 31% of them in matters like murder, rape, kidnapping, armed robbery. You know, these are serious cases. This kind of people should not be inside parliament. And this number has gone up by 55% since 2009. And I was doing back of the envelope calculation that if 2009 to 2024, mein 3.5% per year ke hisab se क्रिमिनल आपराधिक मामलों वाले एमपी अगर बढ़ रहे हैं, तो शायद अगले कुछ सालों में ही 2038 तक हमारी पार्लियामेंट में सभी अपराधी हो जाएंगे, सभी आपराधिक मामलों के आरोपी हो जाएंगे. तो ये तो बड़ा सीरियस मामला है. यानी कि विकसित भारत तो 2047 में बनेगा, उसके 9 साल पहले हमारे यहाँ सारे. तो इसका मतलब कि बहुत गंभीर समस्या तो है. अब इस गंभीर समस्या का, बीमारी का इलाज हमें करना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी का हम ऐसा इलाज करें कि मर्ज के साथ मरीज भी खत्म हो जाए. ये सारा इश्यू है. तो हमारे एडीआर का इसमें मानना ये है कि इस तरह के सारे बिल बहुत अच्छी तरह से उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, डेलिबरेशन होना चाहिए, कंटेस्टेशन होना चाहिए. अपोजिशन का काम है कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करे और उसकी अगर कोई कमियां हैं तो वो बताए, और पार्लियामेंट के अलावा जनता के बीच में भी डिस्कशन हो. और इसीलिए ये आज का हमने डिस्कशन किया था. तो इसमें जैसे चक्षु ने पहले ही बताया कि इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है वो क्या है, हमारे फेडरलिज्म के साथ में समस्याएं हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसकी समस्याएं हो सकती हैं, और पोटेंशियल मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो सकता है. हमने देखा है रिसेंटली दो चीजें जो इसकी पृष्ठभूमि में हमें याद रखनी चाहिए. एक तो ये है कि दो चीफ मिनिस्टर्स, एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, दोनों जेल गए और 5 महीने तक जेल में रहे, और उनके ऊपर आरोप थे, कुछ लोगों का कहना है बहुत वेग आरोप थे और वो आरोप कोई सिद्ध नहीं हुए थे. तो उसमें अगर उनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए तो क्या वो उचित है या अनुचित है, ये आज के विशेषज्ञ इसके ऊपर हमें बताएंगे. तो हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और वरिष्ठ नेता हैं. 3-4 बार मेरठ से बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, जाने माने नेता हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और स्टेट के झारखंड के इंचार्ज भी रह चुके हैं, जैसे मैंने झारखंड का आपको जिक्र किया था अभी. तो मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें, 10 मिनट में समाप्त करें.
धन्यवाद देता हूं आदरणीय विपुल जी. 130वां संविधान संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर विस्तार से चर्चा की है. 2-3 लाइन मैं भी इस पर कहना चाहूंगा. जब कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाएंगे तो उनसे जनता के प्रति और जन समस्याओं के प्रति न्याय की आशा कैसे की जा सकती है, नंबर एक. दूसरी बात है, भ्रष्टाचार, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल होने लगेगा और उसका दुष्परिणाम जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण भी होने लगेगा, और अपराधी और राजनीतिज्ञों का नौकरशाही के साथ गठजोड़, कमजोर कानून व न्याय में देरी और राजनीतिक दलों की भूमिका, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके कारण ये लाया गया है. और उपरोक्त जो बातें मैंने अभी कही है उनका प्रभाव है लोकतंत्र सुशासन पर खतरा, जन विश्वास का घटना, जन संस्थानों का कमजोर होना और सामाजिक माहौल पर गलत प्रभाव पड़ना. अब जो विषय आप लोगों ने उठाए हैं मैं एक कहावत है गेहूं के साथ घुन पिसना, गेहूं अगर 10 किलो पिसता है और उसके साथ 10 घुन पिस गए तब गेहूं काम आता है और घुन जो है वो समाज विरोधी तत्व है, इसलिए उनका तो पिसना या जाना आवश्यक होता है। अब ये क्यों किया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 31वें दिन स्वतः मुक्त माने जाएंगे। और मैं यहां एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि स्वयं सरकार ने इस बात को कहा है, जेपीसी को सौंपा है कि स्टेक होल्डर से डिस्कशन हो जाए, जनता में से विचार आ जाए और उसके बाद जेपीसी अपनी संस्तुति देगी और सरकार उन संस्तुतियों के आधार पर यथा आवश्यक विधेयक को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करेगी। कुल मिलाकर एक बड़ी समस्या जो आज अपराधीकरण के नाम पर पूरे समाज के नाम पर नासूर है, उस अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और ट्रायल एंड एरर से आगे ठीक करते हुए चलेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 176, 164 और 139 AA में संशोधन प्रस्तावित करता है, नैतिकता और सुशासन को मजबूत करता है। इसका मुख्य प्रावधान पद से हटाना, हटाने की प्रक्रिया 31वें दिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हटाएंगे, ये सब करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को 31वें दिन इस्तीफा देना होगा और नहीं देंगे तो स्वतः मुक्त माने जाएंगे। और इसके लिए सरकार दो अन्य विधेयक भी लाई थी जो जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के लिए लाई थी। अब विधेयक का उद्देश्य नैतिकता और सुशासन को मजबूत करना, गंभीर आपराधिक आरोपों में शामिल व्यक्ति को मंत्री पद के दुरुपयोग से रोकना और संवैधानिक संस्थानों में विश्वास बढ़ाना। मैं यहां कहना चाहूंगा, मैं तो स्वयं इस मत का हूं, अपराध सिद्ध होने का भी इंतजार अगर आप करेंगे तो जो हमारी व्यवस्था है न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती है, इसका मतलब तो 2 से 4 बार तक वो सदन में चुनकर जाता रहेगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और दुष्परिणाम उसका क्या आएगा। अभी आप ही की तरफ से बताया गया कि 2038 में पूरा सदन अपराधी हो जाएगा, ये क्या खतरनाक संकेत नहीं है हमारे लिए? इस लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक और 140 करोड़ जनता के लिए भी खतरनाक है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा इस पर विचार होना चाहिए, विचार होने के बाद यथा आवश्यक संशोधित बिल पास होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर फिर आगे कभी आवश्यकता होगी तो संशोधन किया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, संविधान का अनुच्छेद सबको समानता का दर्जा देता है, एक सरकारी कर्मचारी अगर 2 दिन जेल रहा है तो स्वतः निलंबित माना जाएगा, हम 30 दिन हिरासत में रह आएंगे, हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमको कानून फगे लाभ मिलेंगे, ये लाभ हमको नहीं मिलना चाहिए। और खास तौर से एक बात और कहना चाहता हूं, जेल में बैठ कर सरकार चलाना ये तो और भी बड़ा खतरनाक संकेत है। ये दो विषय थे। इसके अलावा आज की तारीख में अगर चुनाव में राजनीतिक दल बाहुबलियों को टिकट देते हैं तो सामान्य एक सर्वेक्षण में था कि 15.4% लोग उसमें से जीतने की संभावना के होते हैं और सामान्य स्थिति के जो सांसद विधायक के प्रत्याशी होते हैं वो 4.4 होते हैं। इसके कारण ही ये जो अपराधी प्रवृत्ति के मामला बढ़ रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं, अपराध मामलों में दोष सिद्धि में देरी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 5000 मामले राजनेता के खिलाफ लंबित है और निर्णय में देरी है, इस आधार पर उनको चुनाव लड़ने का समय मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। मेरा कहना है कि केवल सिद्धि अगर हमने आधार बनाया तो वाकई 2038 में जैसा कि विपुल जी ने कहा है शायद ये विधान लोकसभा और विधानसभाएं अपराधियों के केंद्रीय बन जाएंगे। और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 केवल दोषी राजनेताओं को लड़ने से रोकता है, आरोपियों को नहीं। चुनाव आयोग की भी सीमित शक्तियां, वो दलों का पंजीकरण करता है, निरस्तीकरण नहीं करता। भ्रष्टाचार और विश्वास की कमी होती चली जा रही है। राजनीतिक अपराधी गठजोड़, यहां मैं इस बात से सहमत हूं कि अभियोजन को कमजोर करता है, स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस प्रकार की टिप्पणी की है, लेकिन राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ता प्रभाव के दुष्परिणाम क्या है, लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, विश्वसनीयता का संकट हो रहा है, भ्रष्टाचार और काले धन का प्रभाव चुनाव में बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है क्योंकि अपराधी नेता जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और सुशासन पर भी असर पड़ता है। राजनीतिक अपराधी गठजोड़ आज की तारीख में इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ जा रहा है, संस्थागत होता जा रहा है, हिंसा और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है, लोकतंत्र की शुचिता प्रभावित है और नीति निर्माण पर नकारात्मक असर है विकास के बजाय व्यावसायिक और अवैध नेटवर्क की मजबूती जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित है। जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में गिरावट, योग्य शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी अपराधी उम्मीदवार के धन और बल के आगे हार जाते हैं। इसके सुधार के उपाय थे आरपी एक्ट 1954 की धारा 8(3) के तहत 2 वर्ष से अधिक सजा में अयोग्य घोषित होने वाले अनुच्छेद 102 और 191 के तहत उनकी सदस्यता समाप्ति की बात आती थी। लेकिन ईसीआई वेब पोर्टल राजनीतिक दलों के वित्त पोषण को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ी है। एडीआर बाद 2002 में उम्मीदवार की पृष्ठभूमि जानने का मतदाता को अधिकार मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय इसमें किए थे। पीयूसीएल बाद वर्ष 2004 धारा 33(b) को रद्द किया था, उम्मीदवारों के पूर्ण प्रकटीकरण को बहाल किया था। लिली थॉमस वाले केस में 2013 में आरपीए की धारा 8(4) को अवैध माना था जिसके अनुसार 2 साल या उससे अधिक वाले उम्मीदवारों की सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती। लेकिन मैं अब यहाँ कुछ राजनीतिक बात कहना चाहता हूँ। इस निर्णय के बाद 2 साल की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी, नियम बना। कांग्रेस अपने नेताओं के बचाने के लिए एक अध्यादेश लाई, तब श्री राहुल गांधी जी ने उस अध्यादेश को फाड़ा था। मैं सबसे ज्यादा नैतिक हूं यह साबित करने का उन्होंने प्रयास किया था। पहले अध्यादेश फाड़ते हैं, अब असंवैधानिक बताते हैं इसको, तब झूठ असत्य या अब असत्य। लेकिन 130वां संविधान संशोधन विधेयक आने के बाद श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि यह गैर संवैधानिक है। एक प्रमुख पत्रकार ने तो यहां तक कहा है, वैसे तो राजनीतिक दल के नेता है, कि विपक्षी दलों की दिलचस्पी परिवारों को और सत्ता को बचाने की है और उन्होंने विपक्षी दलों को बहिष्कार ब्रिगेड के रूप में कहा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, राजनीति का अपराधीकरण रुकना ही चाहिए। संसदनों की शुचिता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आज हम लोगों की है जो सदन में बैठे हैं। कानून तोड़ने वाले लोग और अपराधी लोग यदि कानून बनाने का अधिकार पा रहे हैं तो बहुत कठिन हो जाएगा। आज भी मैं एक देख रहा था, एक सर्वेक्षण के मुताबिक लोकसभा में 39% कांग्रेस के, 57% भाजपा के, 39% बसपा के, 50% जदयू के, 81% तृणमूल के, 41% और माकपा के 67% लोग आपराधिक इतिहास के हैं। इन्हीं आधार पर शायद आदरणीय विपुल जी ने चिंता व्यक्त की है कि 2038 आते आते ये सदन 100% अपराधी के स्थान हो जाएंगे। मेरा कहना है संविधान संशोधन का जो 130वां विधेयक है इस पर विचार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पर जनता से भी मत लेना चाहिए, वो जनता हमारी मालिक है, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। और सदस्य के जेपीसी बनी है, स्टेक होल्डर से विचार होना चाहिए। समय भले 2 महीने फालतू लगे लेकिन इस पर एक बार आज की तारीख में सामान्य जनमानस से लेकर लोकतंत्र में जिनकी निष्ठा है ऐसी संस्थाओं का मत लेकर और निर्णय करना चाहिए। और मैं इस मत का हूं कि इस विधेयक को जेपीसी के द्वारा जो सुझाव सुधार आए उनको सरकार को उपयोग करना चाहिए और उपयोग करके इस विधेयक को पारित करना चाहिए। सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि 2047 विकसित भारत का वर्ष होगा भारत के लिए। तो अगर कहीं इस बीच में अपराधीकरण को हम नहीं रोक पाए तो शायद वो लक्ष्य दूर हो जाएगा। बस इतना ही मुझे इस संबंध में कहना था।
वाजपेयी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत स्पष्ट रूप से आपने एक बात तो कम से कम बहुत सही तरह से सामने रखी कि इसमें जनता का व्यू भी आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट इसमें हिचकिचाया, सुप्रीम कोर्ट को इस बात की हिचकिचाहट थी कि ये पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव डोमेन है और पार्लियामेंट को इसके ऊपर नियम बनाना चाहिए, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट ओवर रीच कर दे। लेकिन दूसरा इसमें सवाल जुड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एग्जीक्यूटिव ओवर रीच का मामला बनता जा रहा है कि जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाए या इस्तेमाल कम से कम किया जा सकता है। और इसमें एक विषय ये भी आता है कि जो BNSS में अभी ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी जो है उसके दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको 90 डेज तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर 30 डेज का समय है और 30 डेज में आपकी वो चली जाएगी, सीट चली जाएगी, या 30 डेज में आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन के चलते कस्टडी 90 डेज तक बढ़ाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे विषय हैं जो कि संवैधानिक तौर पर इसके ऊपर काफी संवैधानिक विशेषज्ञों को भी विचार करना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये असंवैधानिक बन जाए।